नमस्कार, आप सुन रहे हैं जनसत्ता पर कारोबार जगत की बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कहा कि घरेलू हवाई यात्रियों की दैनिक संख्या कोविड पूर्व स्तर के करीब पहुंचना एक अच्छा संकेत है। उन्होंने कहा कि सरकार देश में संपर्क सुविधा में सुधार पर ध्यान दे रही है। उल्लेखनीय है कि घरेलू हवाई यात्रियों की संख्या 9 अक्टूबर को 4 लाख पर पहुंच गई, जो कोविड पूर्व स्तर के लगभग है। महामारी से प्रभावित देश का नागर विमानन क्षेत्र पुनरुद्धार के रास्ते पर है। प्रधानमंत्री ने ट्विटर पर लिखा, ये एक अच्छा संकेत है, हमारा ध्यान देश में संपर्क सुविधा में सुधार करने पर है। ये रहन सहन को सुगम बनाने और आर्थिक प्रगति के लिए महत्वपूर्ण है। नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सोमवार को ट्विटर पर लिखा था कि 9 अक्टूबर को देश में घरेलू हवाई यात्रियों की संख्या 4 लाख पर पहुंच गई। घरेलू विमानन कंपनियों ने अगस्त में कुल 1.01 करोड़ यात्रियों को उड़ान सेवाएं दी। ये जुलाई के मुकाबले 4% अधिक है। कोविड महामारी संबंधी नियमों में बदलाव के बिना भारत और चीन के बीच सीधी उड़ानों का संचालन फिलहाल फिर से शुरू होने की संभावना नहीं है, सूत्रों ने ये जानकारी दी। वर्ष 2019 के अंत में वुहान में पहली बार कोविड संक्रमण और बाद में दुनिया भर में इसके फैलने के बाद से दोनों देशों के बीच उड़ान सेवाएं बाधित हैं। महामारी संबंधी प्रतिबंधों के कारण सैकड़ों भारतीय छात्र चीन में काम करने वाले भारतीयों के परिवारों और व्यापारियों के लिए उड़ान में व्यवधान एक बड़ी समस्या बन गया है। चीन ने हालांकि हाल ही में लगभग 3 साल बाद वीज़ा प्रतिबंध हटा लिया है। सूत्रों ने यह बताया कि उड़ानों के फिर से शुरू नहीं होने की संभावना को देखते हुए भारतीयों को हांगकांग से यात्रा करने की सलाह दी जा रही है। भारत और हांगकांग के बीच दैनिक उड़ान सेवाओं का संचालन हो रहा है। ऐसी स्थिति में भारतीय हांगकांग से चीन के शहरों के लिए उड़ान भर सकते हैं, जहां उन्हें 7 दिन तक क्वारंटाइन में रहना होगा। भारतीय यात्री चीन के लिए फिलहाल श्रीलंका, नेपाल और म्यांमार जैसे देशों से यात्रा कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश सरकार 200 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व जुटाने के लिए परिवहन वाहनों पर तिमाही कर बढ़ाने की तैयारी कर रही है। आधिकारिक सूत्रों ने यहां बताया कि मुख्यमंत्री YS जगन मोहन रेड्डी ने हाल ही में संसाधन जुटाने पर एक बैठक में तिमाही कर वृद्धि के प्रस्ताव को मंजूरी दी। सूत्रों ने बताया कि इसके तहत परिवहन विभाग ने टैक्सी, ट्रक और बस जैसे परिवहन वाहनों पर तिमाही कर को 20-25% तक बढ़ाने की योजना तैयार की है। राज्य सरकार ने पिछले साल दिसंबर में 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों पर हरित कर में वृद्धि की थी। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सोमवार को अपतटीय बोली दौर की शुरुआत की और निवेशकों से पारदर्शिता, दक्षता तथा कारोबारी सुगमता का वादा किया। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री ने ह्यूस्टन में उद्योग जगत के नेताओं को संबोधित करते हुए भारत में खोज और उत्पादन गतिविधियों में तेजी लाने के लिए सरकार द्वारा की गई पहलों के बारे में बताया। पुरी ने भारत के घरेलू उत्पादन को बढ़ाने और आयात के बोझ को कम करने में कोल बेड मीथेन के महत्व पर भी अपने विचार रखे। उन्होंने सोमवार को ह्यूस्टन में अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धी बोली के लिए विशेष CBM बोली दौर 2022 की शुरुआत की। इसके साथ ही पुरी ने अपतटीय बोली दौर की शुरुआत की, जिसमें 26 ब्लॉकों की पेशकश की गई है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता है और आने वाले वर्षों में यहाँ ऊर्जा मांग तेजी से बढ़ने की उम्मीद है। मंत्री ने कहा कि गैस की मांग, कीमत और बढ़ते आयात बिल को देखते हुए घरेलू गैस का उत्पादन बहुत महत्वपूर्ण है। मलेशिया के पूर्व प्रधानमंत्री नजीब रजाक की कंपनी वन मलेशिया डेवलपमेंट बरहाद से जुड़े एक संदिग्ध लेन देन की सूचना देने में विफल रहने के कारण भारतीय मूल के एक बैंकर पर 10 साल का प्रतिबंध लगाया गया है और 24 महीने की सशर्त चेतावनी जारी की गई है। सिंगापुर मौद्रिक प्राधिकरण और सिंगापुर पुलिस बल ने एक बयान में कहा कि BSC बैंक लिमिटेड की सिंगापुर शाखा के पूर्व डिप्टी CEO और निजी बैंकिंग के प्रमुख राज श्रीराम पर सोमवार को ये प्रतिबंध लगाया गया। चैनल न्यूज़ एशिया की रिपोर्ट के अनुसार ये प्रतिबंध सोमवार से प्रभावी है और MAS ने जारी किया है। सशर्त चेतावनी SPF के वाणिज्यिक मामलों के विभाग ने जारी की है। पाकिस्तान विभिन्न देशों के करीब 27 अरब डॉलर के द्विपक्षीय ऋण को पुनर्गठित करने की कोशिश कर रहा है। पड़ोसी देश के वित्त मंत्री इशाक डार ने सोमवार को ये जानकारी दी। उन्होंने पेरिस क्लब बहुपक्षीय और अंतर्राष्ट्रीय सॉवरेन बॉन्ड के तहत अमीर पश्चिमी देशों से मिले अंतर्राष्ट्रीय ऋण के पुनर्गठन को खारिज किया। उन्होंने साथ ही कहा द्विपक्षीय ऋण का पुनर्गठन ठीक है। डॉन अखबार की खबर के मुताबिक वित्त मंत्री ने कहा कि पेरिस क्लब के कर्ज का पुनर्गठन करने का कोई लाभ नहीं है क्योंकि इन लेनदारों का कुल कर्ज कुल विदेशी कर्ज के 11% से अधिक नहीं है और एक साल में मिलने वाली कर राहत $1.2 अरब से कम है। पाकिस्तान पर पेरिस क्लब के देशों का कुल $10.7 अरब बकाया है। डार ने कहा जब हम बाहरी भुगतान के लिए 32-34 अरब अमेरिकी डॉलर की व्यवस्था करने जा रहे हैं तो ऐसे में $1.2 अरब कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। पुनर्भुगतान में लगभग $22 अरब का विदेशी ऋण और लगभग $10-12 अरब का चालू खाता घाटा शामिल है। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आएं जनसत्ता.com पर। नमस्कार।